7 दिसंबर के दिन हवाई के पर्ल हार्बर पर जापानी सेना के आक्रमण के 75 वर्ष पूरे हुए। यही वो हमला था जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना। ये वो लम्हा था जिसके कारण कई देशों में ऐसे बदलाव आए जिन्हें दोबारा बदला नहीं जा सका, और ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में से एक है। तो इसी पर एक रिपोर्ट।
December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट गलत नहीं थे। यूं कहा जाए तो 9/11 की घटना से पहले तक अमेरिका के इतिहास में पर्ल हार्बर सबसे बड़ा दहलाने वाला हादसा रहा। पर्ल हार्बर पर हमले में 2000 से अधिक अमेरिकन मारे गए थे और कई और अधिक घायल हुए थे। करीब 200 अमरीकी जहाज नष्ट हुए, 4 नौसेना के जहाज डूब गए थे। 75 साल के बाद वो लोग जो उस समय वहां मौजूद थे और बच गए, पर्ल हार्बर पर इकट्ठा हुए और उस दिन की यादें मानो जीवित हो गईं।
We were the fireball got us all, and we got a hold of a sailor on board the vessel, and they threw us a heaving line, which is a heavy line with a weight on it, and he tied the heavier line on it. We pulled that across. We proceeded to go hand over hand across to the vessel, but 70-80 feet. I don't know how I made it, but I'm here.
इसका प्रभाव बहुत ही गहरा था और ये अमेरिका और जापान तक ही सीमित नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में इतिहासकार रिचर्ड वाटरहाउस, जो ऑस्ट्रेलियन इतिहास में विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे हमले को, इस स्थिति को अलग नजरिए से देखा।
The news was in the afternoon papers of December the 8th and certainly in the morning papers of December the 9th, all on the front pages, of course. It was also on the radio on December the 8th. What is really interesting about all those headlines, and I've read the headlines of all of the major Australian papers, is that the emphasis is not so much on Pearl Harbor, but on the simultaneous Japanese invasion of Malaya.
प्रोफेसर वाटरहाउस कहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर एक ही समय पर मंडरा रहे जापानी खतरे की वजह से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सैनिक पार्टनर बना, और ये वो पार्टनरशिप थी जो आज तक चल रही है। प्रोफेसर वाटरहाउस कहते हैं कि पर्ल हार्बर हमला और अमेरिका का जवाब, इससे ऑस्ट्रेलिया ने समझा कि सैनिक शक्ति की मशीन जैसा जापान उनकी उत्तर दिशा में क्या कुछ इकट्ठा कर रहा है। और प्रोफेसर वाटरहाउस बताते हैं कि इससे ऑस्ट्रेलिया ने यह भी समझा कि अमेरिका जापान के विरुद्ध जाने या सामने डट जाने में कितना सक्षम भी है।
From about late December onwards, Australia increasingly began to turn to the United States because it was realized that we could no longer rely on Great Britain. And then what was reported in the Australian press was the figures that the Americans were quoting about how many tanks, how many aeroplanes, how many guns they were going to produce. And it was just mind-boggling. So, and it was that moment that made Australians realise that this was really the greatest power on earth.
इतिहास बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही द्वितीय युद्ध के समय जापान के सामने डटे रहे, लेकिन पर्ल हार्बर हमले का प्रभाव एक लंबे समय तक छाया रहा और कुछ के लिए ये अब तक है। प्रोफेसर वाटरहाउस कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक घाव भरने में एक लंबा समय लग गया और आर्थिक अनिवार्यता ने इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया।
The Australian servicemen were particularly bitter about it, but I do think there was a real softening from the late 1950s and through the 1960s. And partly it was just, you know, memory makes the sense of revenge less, but also Japan emerged as such an enormous trading partner.
लेकिन प्रोफेसर वाटरहाउस कहते हैं कि सामाजिक नजरिए से ये तर्क दिया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के संबंध पर्ल हार्बर के बाद से कभी भी नहीं सामान्य हुए। वो कहते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया में कितने भी जापानी आते हैं, जापानी सामान भी ऑस्ट्रेलियन जीवन का हिस्सा बना है और जापानी संस्कृति के प्रति भी ऑस्ट्रेलिया में एक सम्मान भाव है। वो कहते हैं कि युद्ध कैदियों के साथ जापान का निर्मम व्यवहार, युद्ध के प्रति एक रुख, ये सब मिलाकर एक दुखद प्रभाव हमेशा बना रहा।
The way the Japanese treated prisoners of war was particularly vile. There's no getting away from it. I mean, for example, Australian prisoners that they took on the islands off New Guinea, they tied to posts and used as bayonet practice. So, yeah, that sort of has still remained, I think, in the Australian psyche. And I think the other thing that's a bit of a problem is the Japanese have never seemed to be as apologetic or as regretful for what they did by, first of all, starting the war in the Pacific and then by the manner in which they conducted the war and their treatment of prisoners of war as the Germans have been.
जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे कहते हैं कि वो इस महीने के अंत में पर्ल हार्बर जाएंगे और उनके प्रवक्ता का कहना है कि वो पर्ल हार्बर के हमले के संबंध में कोई क्षमा याचना भी नहीं करेंगे। लेकिन श्री अबे कहते हैं कि जापान युद्ध का अंत करेगा।
I will visit Pearl Harbor and the USS Arizona Museum to pray for the war dead. Never again to repeat the devastation of war. I would like to show this strong commitment towards the future to the world.
US Defense Secretary Ash Carter का कहना है कि श्री अबे द्वारा हवाई की यात्रा और राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात इस बात को दर्शाता है कि जापान शांति और पुनः मैत्री के प्रति कृतसंकल्प है।